अध्याय दूसरा। रवानगी के दिन हवाई जहाज के अंदर मैं कुर्सियों के बीच के गलियारे में सावधानी से आगे बढ़ रहा था ताकि मेरा बैग किसी के सिर पर न लगे। क्षमा करें मैडम, मैंने एक अधेड़ अमेरिकी महिला से कहा जो मेरी बगल वाली सीट पर बैठी थी, क्या मैं अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठ सकता हूँ? उसने झटके से सिर उठाया, उसकी भौंहें तन गई। मैं उसके विचारों को सुन पा रहा था। दूसरी सीट ढूंढ लो। निश्चित ही मैं ऐसा कर लेता, किंतु जहाज पूरा भरा था और गलियारे में मेरे पीछे खड़े यात्री अधीर हो रहे थे। सावधानी से दुबकते हुए मैं उस महिला के सामने से अपनी सीट पर जा बैठा। उसने मेरे लंबे बालों को तिरछी नजरों से घूरा। मैं खिड़की से बाहर झांकता रहा। कुछ मिनटों में पश्चात मैंने कनखियों से उस महिला की तरफ देखा। ये देखकर मैं भी सहम गया कि वो अब भी तरेर रही थी। तभी उड़ान में विलंब की घोषणा हुई। ये एक लंबी यात्रा होने वाली थी। कुछ समय पश्चात फिर मैंने बगल में देखा, किंतु इस बार उस स्त्री की जगह एक आकर्षक व्यक्ति वहां बैठा था। वो काली जीन्स, काले बूट और बिना बाजू की काली टी शर्ट पहने हुए था। उसकी पतली गोरी बाहों में चांदी के कड़े थे। उसके लंबे बाल बर्फ के समान सफेद और उसकी त्वचा काफी गोरी थी। उसकी आंखें गुलाबी सफेद थीं। उसकी शरारत भरी मुस्कान ने मुझे आकर्षित किया। वो व्यक्ति इतना असामान्य किंतु परिचित लग रहा था। मैंने इसे पहले कहीं देखा था। हाँ, वो प्रसिद्ध रॉक एंड रोल स्टार और मेरे मनपसंद गायकों में से था। उसका नाम था जॉनी विंटर। क्या चल रहा है भाई, मैं जॉनी हूं, लोग मुझे छोटा मंक कहते हैं। उसने हिप्पी शैली में मुझसे हाथ मिलाकर मेरा अभिवादन किया। आपको ये सीट कैसी मिली, मैंने पूछा। कुछ मिनट पहले यहां पर कोई और था। जॉनी ने चुटकी ली और अपने जाने माने लहजे में उत्तर दिया, दोस्त तुम्हारे साथ बैठी औरत कुछ परेशान थी। वो पैर पटकती हुई गलियारे में आकर जोर जोर से चिल्लाकर एक अलग सीट की मांग करने लगी। उसे हमारे जैसे लोग पसंद नहीं है छोटे मंग, किंतु जानते हो जो हुआ ठीक हुआ। परिचारिका ने सीट की अदला बदली करके हम दोस्तों को एक साथ मिला दिया। हमारे पास बात करने के लिए अब बहुत समय था। मैंने उसे अपनी आध्यात्मिक लालसा के विषय में बताया और उसने अपने जीवन की सच्ची कहानियां सुनाई। मैंने उसे बताया कि हाल ही में मैंने फ्लोरिडा में जैनिस जोप्लिन के साथ उसका एक बड़ा शो देखा था। उसका दुबला शरीर हंसी के ठहाकों से हिलने लगा। उससे अधिक पागल और जंगली लड़की पूरे अमेरिका में नहीं मिलेगी। उसने कहा कि जैनिस एक उलझी हुई, कामुक और नशे में धुत रहने वाली लेकिन स्वभाव की अच्छी लड़की थी। जैनिस उसके लिए बहन के समान थी और वो उसके बारे में अक्सर चिंता करता था। नन्ही सी जैनिस अपने आप को ऐसे जला रही है जैसे दोनों सिरों से मोमबत्ती। मैं नहीं जानता कि वो कब तक टिकेगी। गंभीरता से उसकी गुलाबी आंखें बड़ी हो गई और उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जानते हो छोटे मंक, पैसा और शोहरत आदमी को बर्बाद कर सकते हैं। कृपया जैनिस के लिए प्रार्थना करना। गरजते हुए इंजनों के साथ हमारा विमान पट्टी पर दौड़ने लगा और देखते देखते हम आकाश में पहुंच गए। जब हम शिकागो और मिसिसिपी क्षेत्र के महान ब्लूज संगीतज्ञों के बारे में बातें करने लगे तो हमारे हृदय में भी मानो उड़ने लगे। ये विषय निकलते ही जॉनी बहुत उत्तेजित हो गया। भाई, इस विषय पर तो हम हमेशा के लिए बातें कर सकते हैं। यदि ये पुराना जहाज कभी जमीन पर न उतरे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अचानक उसकी नज़र मेरी बेल्ट से बंधी हारमोनिका पर गई और वो बोला, तुम हारमोनिका बजाओ, हम जुगलबंदी करेंगे, ठीक है। एक ही क्षण में उसने अपनी हारमोनिका भी निकाल ली। एक गीत चुनो, क्या तुम्हें लिटिल जूनियर पार्कर का मदर इन लॉ गीत याद है? मैंने पूछा। हाँ दोस्त, बिल्कुल। उसने अपना अंगूठा उठाकर सहमति जताई। आकाश में 30,000 फुट ऊपर मुझे अचंभे में डालते हुए विख्यात जॉनी विंटर ने मुझे अपना साथी बना लिया और मेरे साथ हारमोनिका बजाने लगा। अधेड़ वर्ग के लोग निंदनीय दृष्टि से हमें घूरने लगे, जबकि युवा यात्री खुशी से मुस्कुरा रहे थे। युवा परिचारिकाएं भी कुर्सियों के बीच मुफ्त की संगीत सभा में झूम रही थी। ब्लूज में डूबे हम दोनों अपनी दुनिया में भूल चुके थे। विमान न्यूयॉर्क के JFK विमानतल पर उतरा तथा जॉनी और मैं बाहर टर्मिनल पर आए। दरवाजे पर खड़ी एक आकर्षक डैनिश मॉडल जॉनी की प्रतीक्षा कर रही थी। आसपास के लोग विस्मित हो उठे। जॉनी विंटर के साथ मुझे देखकर पुलकित, फ्रैंक और गैरी मेरे सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। गैरी ने अपनी लहराती हुई दाढ़ी को सहलाया और प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराने लगा। अरे मंक, उसने मजाक में जॉनी के लिए आई युवती के ओर संकेत करते हुए कहा, कैसा होता यदि हमारी बजाय तुम्हें लेने के लिए ये लड़की आई होती। मैंने उससे हाथ मिलाते हुए उत्तर दिया, आज रात से हम अपनी आध्यात्मिक खोज आरंभ करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ मेरा ध्यान कम भटकेगा। हम यूरोप पहुंचे गए। लक्जमबर्ग में पहली रात हम एक खुले मैदान में सोए। एक छोटे तंबू में ठसकर हमने अपने अपने स्लीपिंग बैग में लेट गए। हमारे मन इन आकांक्षाओं से भरे थे कि आने वाला कल क्या लाएगा। अंततः मुर्गी की कुक्कुड़कू से सूर्योदय का संकेत हुआ। तंबू से बाहर निकलकर मैंने और गैरी ने सुबह की ठंडी हवा में अंगड़ाई ली और सदाबहार फूलों की सुगंध भरे वातावरण में सांस लेते हुए अपने सौभाग्य को सराहने लगा। अचानक एक चीख गूंजी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रैंक तंबू से बाहर निकला, बदहवास और संतप्त। मैं लूट गया, मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैं और गैरी दोनों हड़बड़ाकर तंबू में घुसे और चारों ओर खोजने लगे। फ्रैंक पहले से ही हिम्मत हार चुका था। मैं ढूंढ चुका हूं, कोई लाभ नहीं होने वाला। गैरी ने फ्रैंक को सांत्वना देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, कोई बात नहीं दोस्त, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। हमारा सब कुछ तुम्हारा है फ्रैंक। मैंने भी उसे सांत्वना दी। हमें धन नहीं चाहिए, हमारे पास एक दूसरे का साथ है। फ्रैंक ने सिर झुका लिया। असहमति व्यक्त करते हुए वो अपना सिर इधर उधर हिलाने लगा और बोला कि बचे हुए पैसों के साथ आगे यात्रा करना उसके लिए संभव नहीं था। वो वापस घर लौटने के लिए तैयार था तुरंत। तुम लोग आ रहे हो? मेरे पास $20 से भी कम थे। गैरी की आंखें मुझसे मिली और मैंने खामोशी से अपने रुकने का दृढ़ संकल्प उसे जता दिया और वो मान गया। हमने फ्रैंक को, जिसने यूरोप में केवल एक ही रात बिताई थी, भावभीनी विदाई दी। जब फ्रैंक ने अपना बैग कंधे पर रखा और अपने घर की ओर चल पड़ा तो मैं और गैरी उन रहस्यों के बारे में सोचने लगे जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। पास ही एक छोटी सी दरिया थी। कुछ घंटों बाद में मैं उसके तट पर जा बैठा। ऊंचे पेड़ हवा में झूम रहे थे और जलधारा अविरल बह रही थी। फ्रैंक के जाने के पश्चात मेरे पास लगभग कुछ भी नहीं था, किंतु आश्चर्य था कि मैं खुद को स्वतंत्र अनुभव कर रहा था। हॉलैंड के कुछ हिप्पियों ने हमें नाश्ते के लिए आमंत्रित किया। हमारे साथ कुरमुरे बांटकर खाने के बाद कॉसमॉस और चुच नामक युवकों ने हमें अपने वाहन में नीदरलैंड चलने का आग्रह किया। हम सहर्ष उनके साथ उनकी वोल्क्सवैगन वैन में बेल्जियम और हॉलैंड के गांवों से गुजरने लगे। खुली खिड़कियों से बाहर हम बड़े बड़े खेतों को निहार रहे थे। जो सूर्य के प्रकाश में सुंदरता से खिले सैकड़ों हजारों लाल पीले सफ़ेद गुलाबी और बैंगनी ट्यूलिप के फूलों की पंक्तियों से भरे थे। कार में टेप डोनोवन बीटल्स और रोलिंग स्टोन का संगीत जोर से बज रहा था। हमारे नए मित्रों का खूबसूरत घर एपकाउडे में था। वहां हमने कुछ समय विश्राम किया, फिर हम एम्स्टरडैम पहुंचे। वहां हमें एक उपेक्षित गोदाम के पास जाकर रुकना पड़ा। दृश्य बड़ा अजीब था। दर्जनों हिप्पी जमीन पर पड़े बेरोक टोक हशीश पी रहे थे। रोशनी मंद थी। इधर उधर बेतहाशा दौड़ते चूहों ने उछल कूद मचा रखी थी। लंबे बालों वाले संगीतकारों का एक बैंड दूध की पेटियों के ऊपर एक सड़ी हुई प्लाईवुड रखकर बनाए हुए मंच पर संगीत बजा रहा था। हशीश की पाइप हाथ में लिए बड़ी मुस्कान के साथ चूज बोला, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। शायद हिप्पियों के मक्का कहे जाने वाले हेट एशबरी की तीर्थ यात्रा के दौरान। उसने हमें विदाई दी और धुएं में ओछल हो गया। आने वाले दिनों में मैंने और गैरी ने बिना खास पैसा खर्च किए जीना सीख लिया। प्रातः हम कुछ सेंट यानी अमेरिकी मुद्रा खर्च करके बेकरी की भट्टी से निकली गरम गरम ब्रेड खरीदते, एक पेड़ के नीचे बैठकर उसे आधा आधा खा लेते। यही हमारे दिन भर का भोजन था। हमने जहां भी यात्रा की, ये सुखी ब्रेड की ब्रेड ही हमारे प्रतिदिन का भोजन रही। किन्हीं विशेष अवसरों पर चीज का एक टुकड़ा भी नसीब होता था। रात बिताने के लिए कभी हम परिचित दोस्तों के घरों में अतिथि बनकर सोते, कभी पेड़ों के नीचे, कभी उपेक्षित पड़ी इमारतों के अंदर, तो कभी सार्वजनिक स्थलों पर। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत धन था, हम उससे अधिकाधिक समय तक गुजारा करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय यूरोपीय हिप्पी एम्स्टरडैम में भारी संख्या में आ रहे थे। डैम स्क्वायर एक सामाजिक केंद्र था। सैकड़ों जिज्ञासु फैंटासियो, पैराडिसियो और मैकवेग जैसे स्थानों पर तफरीह करने और संगीत सुनने के लिए एकत्रित होने लगे। एक अन्य प्रसिद्ध स्थान था कॉस्मॉस, जो एक आध्यात्मिक नाइट क्लब था। यहीं पर एक रात मुझे लंबे कद के एक अमेरिकी व्यक्ति मिले। उनके छोटे बाल और सिर पर शिखा थी। उन्होंने सफ़ेद धोती कुर्ता पहना हुआ था। क्या तुम्हें भगवान का प्रसाद चाहिए, उन्होंने पूछा। मैंने नम्रतापूर्वक सिर हिलाया, हाथ लाओ। मैंने हाथ फैलाते हुए उन्होंने करछी भर पतली दही में बना फ्रूट सलाद मेरी अंजुली में भर दिया। सलाद का रसदार पदार्थ मेरी हथेलियों से बहने लगा। मैं उलझन में वहीं खड़ा रहा। अब क्या करूं मैं, इसे खा लीजिए, वे हंसे और चले गए। उस समय मैं नहीं जानता था कि भविष्य में विधाता एक बार फिर से हमें मिलाएगा। यहां से हजारों मील दूर एक ऐसी परिस्थिति में जिसकी मैंने कभी दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। गैरी और मैं हर प्रकार के लोगों से दोस्ती कर रहे थे। हालांकि ये कार्य मुझे अच्छा लगता था, तथापि मेरा ध्यान उसमें नहीं था। मुझे कोई तो पुकार रहा था, किंतु वो मेरी समझ से परे था। मैं संग्रहालयों में धार्मिक कृतियों पर चिंतन मनन करने जाता, अथवा वेंडल पार्क में आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन या ध्यान साधना करने। किंतु नहर का किनारा मेरे प्रिय स्थल था, जहां एक ओर सारा शहर सत्ता धन और तरह तरह के सुखों के पीछे दीवाना था, तथा जहां फैशन और रुझान मौसम के साथ बदलते रहते थे। वहीं इन सब के बीच बहता हुआ नहर का ठंडा पानी पूर्णतः शांत प्रतीत होता। मैं घंटों बैठकर बहते जल को देखता और सोचता कि जीवन का प्रवाह मुझे कहाँ ले जाएगा। हमने अपना अभियान जारी रखा। किश्तियों के किराए के लिए बचाकर रखे थोड़े से धन का प्रयोग कर हम हिचकिचाई करते हुए हुक ऑफ हॉलैंड पहुंचे और इंग्लिश चैनल पार करके इंग्लैंड जाने के लिए एक बड़ी नाव पर सवार हो गए। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जहाज बहती लहरों पर धीरे धीरे हिचकोले खाने लगा। जब झटके से जहाज आगे बढ़ा और अस्थिर समुद्र में प्रविष्ट हुआ तो मैं विचार मग्न हो गया कि मैं कहाँ जा रहा हूं। 19 वर्ष की अवस्था में मुझे अपने भविष्य की तैयारी करनी चाहिए थी, किंतु मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। क्यों मैं किसी भी वस्तु पर गंभीरता से ध्यान नहीं लगा पा रहा था, सिवाय उन आदर्शों के जो मेरे दिमाग में भर चुके थे। मुझमें आध्यात्मिक जीवन की अस्पष्ट सी धारणा थी, किंतु मुझे अपने भविष्य की जरा भी भनक नहीं थी। मैंने नाव की बगल में कुछ जीवन रक्षक नौकाएं बंधी देखी और उनसे प्रेरित होकर यह प्रार्थना करने लगा कि अनिश्चितताओं का के समुद्र से बचाने के लिए इसी प्रकार की एक जीवन रक्षक नौका मेरी ओर भी फेंकी जाए। मुझे आदरणीय मार्टिन ल्यूथर के ये शब्द स्मरण हो आए, यदि मनुष्य के पास ऐसा कोई आदर्श नहीं है जिसके लिए वो मर मिट सके, तो उसके पास ऐसा कुछ भी सार्थक नहीं है जिसके लिए वो जीवित रहे। उसी आदर्श की खोज में मैंने अपनी मातृभूमि का नाम और मातृभूमि को छोड़ दिया था, किंतु आज मैं हवा में उड़ते हुए एक टूटे पत्ते के समान था। इससे अनभिज्ञ कि मैं कहाँ जा रहा हूं। अचानक धुंध के बादलों के पीछे से सुंदर सफेद क्लिफ्स ऑफ डावर दिखाई पड़ने लगे। नाव शीघ्र ही तट पर आ लगी और हमें अंग्रेजी अप्रवास केंद्र से ले जाया गया। वहां के अधिकारी हमें संदेह से घूरने लगे। गैरी लगभग 5-8 का पतला व्यक्ति था और उसके लहराते भूरे बाल, दाढ़ी एवं लंबोत्तरे चेहरे को देखकर अक्सर लोग कहते थे कि वो ईसा मसीह जैसा दिखता है। उसने नीली जींस, हरी टी शर्ट और कैनवस के जूते पहने थे। उसकी पीठ पर अमेरिका सेना का एक फटा पुराना बैकपैक और स्लीपिंग बैग बंधा था। जहां तक मेरा प्रश्न था, लंबे बालों की अपेक्षा मेरे किशोर जैसे चेहरे पर अभी तक दाढ़ी मूछों का एक बाल भी नहीं उगा था। मैंने धूसर रंग की पतली धारी वाली जींस, काली जैकेट और बंद गले की टी शर्ट पहनी थी। मेरे परिचितों के लिए ये काली जैकेट मेरी पहचान बन गई थी। 1 साल से अधिक समय में मैं लगातार रोज उसे पहन रहा था। एक बदरंग भूरा बैग और स्लीपिंग बैग मेरे कंधे से लटके थे और मृगचर्म के जूते मेरे पैरों में थे। पंक्ति में खड़े हम लोग सरकारी अफसरों की तीखी निगाहों और टिप्पणियों के निशाने थे। मेज पर पहुंचकर हमने सहमते हुए अपना अमेरिकी पासपोर्ट आगे किया। बदले में हमें तुरंत ही एक कमरे में खींच लिया गया। कुछ मिनट बाद 2 कस्टम अधिकारी और एक बॉबी पुलिस का सिपाही अंदर आए और हमें घूरने लगे। उनके प्रमुख ने सलेटी रंग का सूट और भूरी टाई पहनी थी। उसने आदेश दिया, इनकी तलाशी लो, इनके पास नशीले पदार्थ हो सकते हैं। मेरे बैग की चीजों को मेज पर उलटने के बाद उन्हें एक हरी टी शर्ट, 1 जोड़ी पजामे, 1 टूथब्रश, बालों का ब्रश, साबुन की एक टिकिया, बाइबल और रेंडॉल्स आइलैंड के पर मिले पर्चे के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। उसका मुंह चढ़ गया, बस यही है तुम्हारे पास? झेमते हुए मैंने उत्तर दिया, हाँ बस यही है सर। और साथ में ये, मैंने अपनी हारमोनिका दिखाई। गैरी की भी तलाशी ली गई। फिर एक और भारी प्रश्न आया, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? जब हमने उन्हें अपनी अल्प धनराशि दिखाई तो उनकी खीज कोप में बदल गई। उनका प्रभारी का चेहरा लाल हो गया। हमें तुम्हारे जैसे जानवर अपने देश में नहीं चाहिए, उसने थूकते हुए कहा। हम तुम्हारे सारे गंदे बाल काटकर तुम्हें जेल में डाल देंगे। बॉबी की ओर मुड़कर उसने आदेश दिया, कैंची लाओ और खोपड़ी तक सारे बाल काट डालो। तब उन्होंने हमें निर्वस्त्र कर दिया और बारीकी से हमारी वस्तुओं की जांच की। फिर उन्होंने हमारी ऐसी गहन पूछताछ की कि जिसने हमारे दिमाग को ही चाट लिया। अंत में ये कहकर तुम एक बड़ी मुसीबत में हो, पैर पटकते हुए वो बाहर निकल गए। चिंता के मारे हमारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। हम लगभग एक घंटा चुपचाप बैठे रहे, बेचैनी से अपनी तकदीर के फैसले का इंतजार करते हुए। अंततः दो बॉबियों ने झटके से दरवाज़ा खोला, हमारी बाहें पकड़ी और धकेलते हुए एक गलियारे में ले गए। जब हम कस्टम के पास पहुंचे, उन्होंने हमें धक्का मारकर दरवाजे से बाहर ढकेल दिया। एक भी गलत हरकत और तुम जेल की हवा खाओगे, ये कहते हुए उन्होंने हमारे पासपोर्ट पर ठप्पा मारा और हमें छोड़ दिया। घबराए हुए हम सड़क के किनारे आ खड़े हुए। इंग्लैंड के ग्रामीण परिवेश की सुंदरता को निहारते हुए हमने लिफ्ट मांगने के लिए अपना अंगूठा ऊपर उठाया। एक कार रुकी और हम उसमें बैठ गए। कार में बैठी एक युवती और उसके बॉयफ्रेंड ने मुस्कुराकर हमारा अभिवादन किया और उनका स्कॉटिश टेरियर कुत्ता हमारी गोद में कूद पड़ा। अब कहाँ जा रहे हैं, युवती ने पूछा। मालूम नहीं, गैरी ने उत्तर दिया। बियर की बोतल से घूंट लेते हुए युवक ने कहा, हम आइल ऑफ वाइट में हो रहे एक रॉक फेस्टिवल में जा रहे हैं, हमारे साथ चलो दोस्तों। गैरी और मैंने मुस्कुराकर हामी भर दी। सफर आगे बढ़ा। रास्ते भर भौंकता कुत्ता हमारे मुंह चाटता रहा। हम नाव से उस द्वीप पर पहुंचे और शीघ्र ही हिप्पियों के झुंड में शामिल हो गए। ये विशाल समारोह हरे भरे पहाड़ों और घाटियों के बीच मनाया जा रहा था। प्रवेश द्वार पर क्रोधित पुलिस खूंखार कुत्ते लिए बेटिकट दर्शकों से भीड़ रही थी, जबकि पीछे जोरों से रॉक बैंड बज रहे थे। 3 दिन और रातों का शानदार समारोह जोर शोर से चल रहा था। हवा हशीश से उसके धुएं से भरी थी। चारों ओर लोग नशापान में मस्त थे। पास के एक छोटे टीले पर युवक युवतियां एक साथ कीचड़ में सने फिसल रहे थे और उनसे कहीं अधिक अर्धनग्न लोग संगीत की धुन पर थिरक रहे थे। एक रात भारी वर्षा हो रही थी। गैरी और मैं मंच से कुछ ही दूर खड़े थे, तभी जिमी हेंड्रिक्स मंच पर आए। उन्होंने ढीली आस्तीनों वाला नारंगी रंग का वेलवेट सूट पहना हुआ था। वो काफी हताश दिख रहे थे। मस्ती से गिटार बजाकर लोगों को चकाचौंध करने वाले इस शोमैन का जो रूप मैंने पहले देखा था, आज दूर दूर तक वो नजर नहीं आ रहा था। आज रात वे एक गंभीर संगीतज्ञ लग रहे थे। उन्होंने स्टार स्पैंगल्ड बैनर, अमेरिका का राष्ट्रीय गीत, का एक रॉक रूपांतर गाया। मेरी पीढ़ी के लिए वे एक हीरो एवं हिप्पियों के मसीहा थे। वो हमेशा स्वच्छंदतापूर्ण जीवन का संदेश देते थे, ऐसा संदेश जो परंपरागत समाज शैली का विरोधी था। मेरे लिए उसका अर्थ था कि मैं लोकमत को अनदेखा कर अपने हृदय की पुकार सुनूं। गरजता संगीत मानो पहाड़ियों को हिला रहा था, सागर को मथ रहा था और बादलों को छितरा रहा था। लेकिन मेरे भीतर की खामोश आवाज, जिसे मैं अभी तक कोई नाम नहीं दे पाया था, उस संगीत से कहीं ऊंची थी। समारोह के पश्चात गैरी और मुझे लंदन जाने वाली एक वैन में लिफ्ट मिल गई। उसमें बैठे सहयात्री काफी उद्दंड प्रकृति के थे। वैन में बैठे बैठे मैंने अपना बैग टटोला और वहां वो पर्चा निकाला जो उस विचित्र साधु ने रैंडल आइलैंड में मुझे दिया था। पर्चे में पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति का चित्र था। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर बादामी आंखें आध्यात्मिक आनंद से चमक रही थी। यद्यपि वो वृद्ध थे, तथापि उनकी भाव भंगिमाएं एक बालक की मासूमियत से भरी थी। उन्होंने बंद गले का एक स्वेटर पहना हुआ था और उनकी मुस्कान से शांति झलक रही थी। मैं नहीं जानता था कि वे कौन थे और कहां से आए थे, किंतु मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ। मैंने सोचा, यदि इस संसार में किसी के पास आध्यात्मिक आनंद है तो वो इन्हीं के पास है। कुछ समय पश्चात हम लंदन के एक उपनगर में एक छोटे से घर में उन मित्रों के साथ रहने लगे जो हमें आइल ऑफ वाइट में मिले थे। एक मित्र समाचार पत्र पढ़ रहा था, अचानक उसका चेहरा फिक्का पड़ गया और अवसादग्रस्त हो गया। क्या हुआ, हमने पूछा। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है दोस्तों, जिमी हेंड्रिक्स नहीं रहे। अरे नहीं, क्या हुआ, मैंने पूछा। हमारे मेजबान ने धीरे से समाचार पत्र नीचे रखा। लंदन के अखबार के अनुसार कल रात उन्होंने नींद की अत्यधिक गोलियों का सेवन कर लिया और उल्टी से दम घुटकर उनकी मृत्यु हो गई। गैरी ने हाथों से अपना सिर थाम लिया। मुझे लगा मानो मेरी सांस रुक गई हो। मुझे इससे क्या सीखना चाहिए, मैंने स्वयं से पूछा। हेंड्रिक्स के पास इतनी कम उम्र में ही इतना धन, नाम और विलक्षण प्रतिभा थी कि उसके लिए पूरी दुनिया लालायित रहती थी, किंतु फिर भी वे असंतुष्ट थे। हमारी पीढ़ी के ये पूजनीय व्यक्ति अपने ही अति का शिकार हो गए थे। हजारों लोग घोषणा कर रहे थे कि सेक्स, ड्रग्स और रॉक एंड रोल विकसित जीवन शैली के तरीके हैं। स्वच्छंदता उनके जीवन का नारा था, किंतु क्या वास्तव में वे स्वाधीन थे? मैंने उन सभी भले लोगों के बारे में सोचा जिनसे मैं मिला था, जो हिप्पी आंदोलन के भाग थे, किंतु मुझे वो लोग भी याद आए जो वहशी, जंगली और कृतघ्न प्रतीत होते थे। मैंने विचार किया कि ऐसे कृतज्ञता वो सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे भाइयों को सिखाया था। क्या मैं वास्तव में इस हिप्पी आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता था? मैं निश्चित ही अपनी माता पिता की पीढ़ी के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। फिर मैं किनसे तालमेल बैठा था? हे भगवान, कृपा करके मार्ग दिखलाइए। इन विचारों के साथ मैंने जिम्मी के लिए प्रार्थना की। जिस आंदोलन के लिए मैंने अपने समाज और परिवार के मानदंडों का त्याग किया था, उसके प्रति मेरा पहले से ही मोह भंग होना शुरू हो चुका था। कभी मैंने एक सपना देखा था कि हिप्पी आंदोलन समाज की चेतना को जागृत करेगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि इस आंदोलन के विनाशकारी तत्व, जैसे विरोध के लिए विरोध एवं अपने सुख के लिए कुछ भी करो, उसकी अच्छी बातों पर हावी हो रहे थे। जिमी हेंड्रिक्स की त्रासद मृत्यु के साथ ही मेरा सपना भी लगभग मर गया। फिर भी जैसे मृत्यु के कगार पर खड़ा व्यक्ति जीने के लिए प्रयत्न करता है, वैसे ही अपनी पीढ़ी के इंद्रिय भोगों में मैं ऐसे कूदने वाला था जैसे मैंने पहले कभी नहीं किया था। लंदन में गैरी और मैं पिकेडली सर्कस घूमने जाते थे। हमारे साथ भड़कीले पहनावे में नशेड़ी, गंजेड़ी और शांति शांति कहने वाले हिप्पी रहते। हिप्पी रैप गाते और बजाते, ड्रग के दलाल और वेश्याएं ग्राहक फंसाने आते, बॉबी पैनी नजरों से घूर कर देखते, स्कीन हैंड गुर्राते और पर्यटक इन सब विचित्र दृश्यों के फोटो खींचते रहते। लैम्बेथ रोड में ब्रिटिश संसद से नदी के उस पार हमें कैथोलिक पादरी मिला जो युवा यात्रियों से सहानुभूति रखता था। हर रात 9 बजे वो अपने चर्च का पथरीला तहखाना युवाओं को निःशुल्क सोने के लिए खोल देता। सुबह 9 बजे हमें वो स्थान छोड़ना पड़ता। तहखाने में सोने के लिए ठंडी कठोर भूमि के अतिरिक्त हमें कुछ नहीं दिया जाता था। यात्री अपना स्लीपिंग बैग लाते और बिछाकर सो जाते। फिर भी सोने के लिए वो एक अच्छी जगह थी। हर रात जमीन पर एक उचित ढूंढ कर मैं उस कमरे में घूमता। पूरा तहखाना बिना नहाए लोगों और हशीश की तीखी दुर्गंध से भरा होता। जब बत्तियां बुझा दी जाती तो बहुत अंधेरा हो जाता। शीघ्र ही मुझे युगल जोड़ों के सहवास करने, आहें भरने और जमीन पर लेटने की आवाज़ें आने लगती। कभी कभी मैं देखता कि कुछ लोग कमरे के दूर कोने में छोटी मोमबत्ती की लौ में अपनी बाहों पर पट्टी बांधकर हेरोइन के इंजेक्शन लगा रहे होते। इस वातावरण से प्रभावित होकर मैं पहले से ही कहीं अधिक गांजा और मैरिजुआना पीने लगा और इस प्रकार ऊपरी तौर से भीड़ के साथ घुलमिलने लगा। लेकिन एक ओर जहां मेरे आसपास के लोग परस्पर मेलजोल बढ़ा रहे थे, मैं अंदर ही अंदर सबसे दूर होता गया। मैं बहुत बार सोचता कि मैं क्यों नशा पान करने का झंझट पाल रहा हूं। अक्सर जब गैरी सोने के लिए चला जाता था तो मैं थेम्स नदी के तट पर घंटों यूं बैठा रहता। बहते जल की विशाल चादर मेरे मन पर एक सम्मोहक प्रभाव डालती और मैं अपनी जीवन शैली के प्रति प्रश्न उठाने लगता। बिग बैन के निष्ठुर कांटों को देखकर मैं सोचता कि कहीं अपना समय व्यर्थ तो नहीं गंवा रहा हूं। मेरे मन के एक कोने में यह भी पुकार उठती थी कि मैं हमेशा के लिए अपनी सकुचाहट से बाहर निकलकर जिंदगी का ऐसा भोग करूं जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैं 19 वर्ष का था और आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अपने शर्मीले स्वभाव के कारण मुझे लड़कियों के साथ डेट पर जाने की अपेक्षा हमेशा कमरे में बैठकर संगीत सुनना या दोस्तों के साथ घूमना अधिक अच्छा लगता था। मुझे बहुत प्रस्ताव मिलते किंतु मैं झिझक जाता, डरते हुए कि कहीं मेरी स्वतंत्रता न छीन जाए या उससे भी बुरा कि मैं कभी किसी भली लड़की का दिल न तोड़ दूं। किंतु मेरे चारों ओर अन्य लड़के लड़कियों के साथ अपने कामकेलियों की डिंगे मारा करते। मैं दूसरों से भिन्न रहने से तंग आ चुका था। एक खेल की दृष्टि से मैं कुछ लड़कियों से मिला भी और अपने प्रेम संबंधों को लेकर गंभीर प्रयत्न भी किए, मगर फिर भी मुझे अपने सारे प्रयास खोखले लग रहे थे। एक शक्ति मुझे इन सब से दूर खींच रही थी। उस आंतरिक शक्ति के साथ युद्ध में लड़ते हुए मैं जीतने के लिए दृढ़ संकल्प था और साथ ही साथ उन स्वच्छंद सुखों का अनुभव भी करना चाहता था जिनका समाज इतना गुणगान कर रहा था। क्या मैं अपने हृदय में स्थित भगवान के विरुद्ध लड़ रहा था? हाँ, और मैं इस युद्ध में जीत रहा हूं। मन ही मन मैंने गर्व किया। लेकिन देर रात जब मैं वापस नदी के तट पर लौटा और उसके प्रवाह को देखने लगा तो मुझे बहुत लज्जा आई। भले ही मैं जीत रहा था, लेकिन मैं स्वयं को खोया हुआ महसूस कर रहा था। एक शाम मैं आंखें मूंदे मौन ध्यान में ट्रैफलगर स्क्वायर चौक पर सैकड़ों कबूतरों के झुंड के बीच बैठ गया। चहकते बच्चों, बतियाते पर्यटकों को और हॉर्न बजाते शाम के ट्रैफिक के मध्य मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैं अपने भीतर एक ऐसी दुनिया से जुड़ गया हूं जो मेरे आसपास स्थित किसी भी वस्तु से अधिक गहन है। गहरी सांस लेकर मैं मुस्कुराया। अपने शरीर के विषय में मेरी धारणा मानो भाप बनकर उड़ गई और मुझे लगा कि मेरा मन शांति के लिए एक सागर में विलीन हो गया। उसकी तुलना में भौतिक सुख या आत्मनिरीक्षण की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न तुच्छ दिखने लगा। आंखें खोलने पर मैंने लंदन शहर को एक सुंदर परिवार में परिवर्तित होते देखा जो संगम मरमरी सिंहों खंबे पर स्थित लॉर्ड नेसल के बूथ, असंख्य कबूतरों, पर्यटकों, व्यापारियों, ग्राहकों और भिखारियों से पटा था। टहलते हुए मैंने सड़क पार की। एक चर्च से डबल रोटी और जौ का सूप दान में मिला। बेघर लोगों के साथ बैठकर मैंने भी उसका लुत्फ उठाया। फिर सच्चे आदरभाव से मैं सेंट मार्टिन ऑफ द फील्ड्स चर्च में गया जहां लकड़ी के एक बेंच पर बैठकर मैं तल्लीनता से पवित्र बाइबल पढ़ने लगा। एक विशेष परिच्छेद मेरे हृदय को छू गया। ईसा मसीह अपने अनुयायियों से कह रहे थे, लोगों की भीड़ से बाहर आओ और अलग हो जाओ। मैं विचार करने लगा, क्यों मैं अपने मित्रों और समाज के फैशनों के साथ सामंजस्य बैठाने के प्रयास में अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहा हूं। क्यों न मैं अपनी शर्तों पर जीने का प्रयत्न करूं और शायद कभी भविष्य में भगवान की शर्तों पर भी। नाव द्वारा इंग्लिश चैनल पार करके मैं और गैरी फ्रांस स्थित कैलाइस में उतरे। धूप भरा दिन था, पक्षी सुंदर वृक्षों पर चहचहा रहे थे तथा हरे भरे चरागाहों में कोमल घास पवन के हल्के झोंकों से झूक रही थी। हम अपनी आज़ादी का आनंद उठा रहे थे। अब हम जहां चाहे वहां जा सकते थे। अरे मंक, अब कहाँ, तुम्हारी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। गैरी की हरी आंखें रोमांच से चमक उठी। हम पश्चिमी फ्रांस के एक गांव की सड़क के किनारे खड़े थे। दुनिया तुम्हारे इशारे पर चलने के लिए तैयार है। गैरी ने अपनी जीन्स की पिछली जेब से पश्चिमी यूरोप का एक फटा पुराना नक्शा निकाला और अलग अलग स्थानों को इंगित करने लगा। मोरक्को, स्पेन, पेरिस, रोम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कहाँ चलोगे? तुम कहाँ जाना चाहोगे गैरी? हर जगह, किंतु प्रश्न ये है कि किस क्रम में। एक क्षण के लिए सोचते हुए मैंने उन लहरों को याद किया जिन्हें मैं अक्सर ध्यान से देखा करता था और अपना हाथ आकाश में उठा दिया। हमारी मंजिल क्या होगी ये हम भगवान पर छोड़ देते हैं। मतलब? गैरी ने मजाक में हाथ जोड़ लिए। तुम सारा दिन बैठकर ग्रंथों का अध्ययन और ध्यान करते हो जबकि मैं घूमता रहता हूं। फिर अपने हाथ हवा में उठाकर उसने कहा, तुम फैसला करो कि कैसे हम अपनी मंजिल को भगवान पर छोड़ दें। जमीन से एक पीला जंगली फूल चुनते हुए मैंने कहा, इसकी तरह। क्या तुम सदा के लिए यहां इस फूल की तरह बैठना चाहते हो? गैरी, देखो, मिट्टी में दबे एक छोटे बीज से इस फूल ने अपना यह सुंदर स्वरूप पाया है। कैसे? अपनी नियति को भगवान पर छोड़कर। तुम जीते भाई, किंतु तुम्हारा यह मोहक काव्य हिचहाइकिंग में कैसे सहायता करेगा? फूल को सूंघते हुए मुझे एक विचार सूझा। जब भी कोई कार हमारे लिए रुकती है तो सबसे पहले वे क्या पूछते हैं? चलो हम दोनों एक नाटक करते हैं। तुम एक ड्राइवर बन जाओ और मैं हम दोनों की भूमिका निभाता हूं। गैरी ने कंधे उचकाए, हेलो, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? कासाब्लांका, उसने कहा, कार का स्टीयरिंग घुमाने की नक्कल करते हुए। मैंने ताली बजाई, बिल्कुल ठीक, हम भी वहीं जा रहे हैं। उसे फूल थमाते हुए मैंने पूछा, क्या लगता है गैरी, जब भी हम सड़क के किनारे खड़े होंगे हमारी मंजिल एक रहस्य होगी जिसका उद्घाटन हमें अगली लिफ्ट देने वाला करेगा। गैरी उछलकर खड़ा हुआ और मेरी पीठ थपथपाते हुए बोला, वाह, बिल्कुल ठीक, जहां हमारे लिफ्ट देने वाले जा रहे होंगे हम भी वहीं जाएंगे। उसने वो जंगली फूल हवा में उड़ा दिया। कुछ दिनों पश्चात गांवों और कस्बों को पार करते हुए हम पेरिस की सीमा पर पहुंचे। जो शहर निकट आने लगा हम आशान्वित और उत्तेजित होने लगे। द लूअर, एफिल टॉवर, शानदार स्मारक, महल और कैफे हमसे कुछ ही मील दूर थे, किंतु हमारे लिए नियति की कुछ अलग ही योजना थी। हमें जो लिफ्ट मिली वो हमें जिनेवा, स्विट्जरलैंड ले गई, जहां पहुंचने पर थोड़ी ही देर में हम एक शांत नवचंद्राकार झील के तट पर ध्यान साधना करने लगे। एक युवा छात्रावास में हम 25 अन्य लोगों के साथ एक बड़े कमरे में ठहरे। उस कमरे में रुका एक युवक जिम हाल ही में अमेरिकी सेना से सम्मान सेवानिवृत्त हुआ था। जिम को पूरब की आध्यात्मिक पुस्तकों में बहुत रुचि थी और हमने घंटों बैठकर बातें की। वो छरहरा बलवान और रोमांच के लिए तत्पर था। सेना में बिताए अनेक वर्षों ने उसे पूरा जुझारू बना दिया था। एक दिन उत्सुकता से जिम ने पूछा, मंक, वियतनाम युद्ध के दौरान तुम ड्राफ्ट से कैसे बचे गए? सेना में जबरन भर्ती जो करते थे उससे कैसे बचे गए? मैंने उसे बताया कि कैसे ड्राफ्ट बोर्ड ने भूल से मेरे दस्तावेजों में मेरी गलत जन्मतिथि भर दी थी। बाद में उन्होंने ड्राफ्ट लॉटरी में एक के बाद एक जन्मतिथियों के पर्चे निकाले। पूरा राष्ट्र सांस थामे देख रहा था। जिन लोगों की जन्मतिथियां लॉटरी में पहले निकली थी उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए पहले बुलाया गया। मेरी वास्तविक जन्मतिथि पहले निकली थी और गलत तिथि बाद में। बाद में निकली तिथियों के लोगों को कभी बुलाया ही नहीं गया। जिम शून्य में ताकने लगा। ठोड़ी मलते हुए वो सिर हिलाने लगा और एक मिनट सोचकर बोला, शायद वो ड्राफ्ट बोर्ड की गलती नहीं थी, शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और ही योजना बनाई है। जिम ने गैरी और मुझे इटली होते हुए मोरक्को चलने का निमंत्रण दिया। हम मान गए। क्रिस्टोफर कोलंबस के शहर जिनेवा के पास हम उसकी वोल्क्सवैगन बीटल कार में बैठ गए। गाड़ी में बिजली की कुछ उपकरण लदे थे जिन्हें जिम अमेरिका में बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था। फिर उसके पास सेना में कमाया धन भी था। सीढ़ीदार पहाड़ों से होते हुए हम मेडिटेरियन सागर पहुंचे। दोपहर के सूरज की किरणें गहरे नीले पानी पर चमचमा रही थी। उसे देखकर हमने तैरने का निर्णय किया। जब हम वापस कार के पास लौटे तो सब कुछ चोरी हो गया था। जिम हक्का बक्का रह गया। जब हम पुलिस स्टेशन में रपट लिखवाने के लिए गए तो मामला और पेचीदा हो गया। पुलिस ने चिल्लाते हुए हमें जेल में धकेल दिया। हम विस्मित थे। जैसे ही लोहे का भारी दरवाज़ा बंद हुआ मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उनका प्रमुख हमारे पास आया। तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं, वो जोर से भौंका, जेल में सड़ो या शहर से बाहर चले जाओ हमेशा के लिए। निस्संदेह हमने दूसरे रास्ते को चुना। रात के अंधेरे में एक पुलिस की गाड़ी लाल सायरन बजाती हमें शहर की सीमा के बाहर छोड़ आई। वो इटली में हमारा पहला दिन था। हम रात भर गाड़ी चलाकर सुबह एक तार घर पहुंचे। जिम ने जर्मनी में अपने सैनिक मित्रों से संपर्क किया और उन्होंने उसे अपनी छावनी तक पहुंचने के लिए आवश्यक पेट्रोल का खर्चा भेजा। गैरी और मैं फिर अकेले रह गए, सड़क के किनारे खड़े हुए। अब हम आगे की सोच में पड़ गए। अरे मंक, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी किस्मत ही फूटी है? पहले फ्रैंक और अब जिम। जो भी हमारी सहायता का प्रयास करता है उसका सब कुछ लूट जाता है। मालूम नहीं गैरी, शायद इन सब के पीछे कुछ कारण जरूर है। गैरी ने पीछे मुड़कर उस रास्ते को देखा जिससे हम अभी अभी आए थे। क्या तुम्हें सही में लगता है कि सब चीजों के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है? हाँ, मुझे विश्वास है कि इसके पीछे अवश्य ही एक सुंदर योजना होगी। गैरी ने सिर हिलाया। मुझे भी विश्वास है। इसी के साथ हमने फिर अपने अंगूठे हवा में उठा दिए, ये प्रतीक्षा करते हुए कि अब तकदीर हमें कहाँ ले जाएगी। यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त होता है।